أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان سورہ رحمان کی جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے ان میں ایک ایسا عظیم الشان دائمی اعلان کیا گیا ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں اور توحید کا گہرا راز اس میں بیان فرمایا گیا ہے اور خدا کے واحد اور احد ہونے کے باوجود مخلوقات سے اس کے تعلقات کا راز اس میں کھولا گیا ہے کل من علیہا فان ہر وہ چیز جو سطح عرض پر موجود ہے وہ مٹ جائے گی باقی نہیں رہے گی فان ہلاک ہونے والی ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تیرے رب کا چہرہ جو جلال اور اکرام والا چہرہ ہے صرف وہی باقی رہے گا لیکن اس آیت کے ترجمے میں ترجمہ کرنے والوں کو دقت پیش آتی ہے اور اس لیے مختلف ترجمے پیش کیے جاتے ہیں خدا کا چہرہ سے کیا مراد ہے بعض لوگ اس سے ذات باری تعالیٰ ملے مراد دیتے ہیں اور ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ خدا کی ذات باقی رہے گی اور ہر دوسری چیز مٹ جائے گی بعض یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی نگاہیں جس پر پڑیں اس کا جس کو خدا کا وجہ نصیب ہو جائے وہ مستثنا ہے وہی باقی رہے گا جسے اللہ کی رضا حاصل ہو اور خدا کی رضا حاصل باقی رکھے حضرت مسلم ماؤود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی عارفانہ ترجمہ تفسیر صغیر میں فرمایا ہے کہ مراد یہ ہے کہ ہر چیز فانی اور بے معنی اور بے حقیقت ہے اور ان کی بقا کے بھی کوئی معنی نہیں جو بظاہر نظر بھی آئیں وہی چیز باقی ہے جو رب کی رضا کے ساتھ باقی ہے اس کی رب کی رضا کے ساتھ زندہ ہے اس کے علاوہ اس میں ایک اور راز یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ اگر کوئی چیزیں باقی رہتی ہیں تو فی ذاتے ہی باقی نہیں رہ سکتی اللہ نے یہ استثناء کر کے متوجہ فرما دیا کہ ہم خدا کے سوا بھی تو بے انتہا وجود دیکھتے ہیں اور مرنے کے بعد کی زندگی کا ہم سے وعدہ یہ کیا گیا ہے تو کل من علیہ فان سے کیا صرف یہ مراد ہے کہ اس دنیا سے مٹ کر ہر چیز ایک نئی زندگی میں داخل ہوگی لیکن یہ مراد نہیں مراد یہ ہے کہ اللہ کے ذات کے ساتھ جو اس کی وابستگی ہوگی اسے نئی زندگی ملے گی اور اسے بقا نصیب ہوگی जिसे खुदा का वजह नसीब ना हो, वजह से मुराद तवज्जो भी है, रहमत शफकत प्यार और मोहब्बत का ताल्लुक, ये सारी बातें प्यार की तवज्जो में दाखिल होती हैं। बस वजह रब्बे का मतलब ये होगा सवाए उनके जिनको खुदा के प्यार की तवज्जो नसीब हो, वो फना होने वाले वजूद नहीं हैं, वो हमेशा बाकी रखे जाएंगे। इस इन मानों में हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अव्वल इस आयत का के से मुराद हैं, और सबसे अव्वल ये आयत आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही पर इतलाक़ पाती है। आज जुमे का मुबारक दिन है, 29 रमज़ान है, अलविदाई जुमा कहलाता है, जुमातुल विदा। इस जुमे के आगाज़ ही में, यानी जब सूरज ढल गया जुमेरात का और इस्लामी नुक्ते नगाह से जुमे की रात शुरू हो गई, और जब अंग्रेज़ी नुक्ते नगाह से भी रात के 12 बजे और एक दो मिनट ऊपर हुए, उस वक्त मेरी बीवी को अपने रब का बुलावा आ गया। इससे पहले मैं उनका जिक्र नहीं किया करता था, उसकी वजूहात हैं। अव्वल ये कि मुझे डर था कि जिस बात पर अगर काबू ना रहा तो जमात जो पहले ही निढाल है बिल्कुल ज़िबा की हालत में पहुंच जाएगी। जमात से जो मेरा ताल्लुक है वो ऐसा है कि मैं जमात के दिल में रहता हूँ, जमात मेरे दिल में रहती है। ये ऐसा ताल्लुक है जो ख़तों का मोहताज नहीं, पैगामों का मोहताज नहीं, किसी को बताना नहीं पड़ता कि उसे मुझसे कितनी मोहब्बत है, मुझे किसी को बताना नहीं पड़ता कि मुझे उससे कितनी मोहब्बत है। ऐसे जारी और सारी जिंदा रिश्ते हैं जो वजह रब्बे का के तुफैल हमें नसीब हुए हैं, और वजह रब्बे का की ये इलामत है कि लिल्लाही मोहब्बतें इतनी शिद्दत पकड़ जाएं कि दूसरी दुनियावी मोहब्बतें उनके मुकाबले पर कोई हैसियत में रखें। तो एक तो ये खौफ दामनगीर था कि कहीं मेरे जज्बात के गलबे के नतीजे में वो महमदी जो पहले ही बहुत शिद्दत के साथ मेरा दुख महसूस कर रहे हैं उनकी हालत गैर ना हो जाए। दूसरे ये बात पेश नज़र थी कि ज़रूरत ही क्या है, वो जानते हैं, मैं जानता हूँ, इतलाएँ मिल रही हैं और सबको इल्म है क्या सूरत हाल है। तीसरी एक वजह यह थी कि बावजूद इसके के बाद रोया ऐसी मिलती रहीं जिनसे ये ख्याल गुजरता था कि शायद खुदा तआला की तकदीर शिफा की सूरत में ज़ाहिर हो, लेकिन बाद और ऐसी इलामतें साथ साथ जारी रहें जिनके नतीजे में मैं यकीन के साथ जमात के सामने कोई नज़रिया पेश नहीं कर सकता था। अगर खुदा तआला की तरफ से वाज़ेह तौर पर विसाल की खबर मिलती तो तब भी मैं किसी रंग में जमात को तैयार करता, अगर वाज़ेह तौर पर शिफा की खबर मिलती तो तब भी मैं तैयार करता और बता देता कि खुदा तआला ने खुशखबरी अता फरमाई है, जिस तरह से पहले बताया गया और बड़ी शान के साथ अल्लाह तआला ने आपके हक में वो नज़ारा पूरा फरमाया। तो इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं थी, मसलन मैं आपके सामने अब खोल कर बयान करूँगा इस अरसे के कुछ वाक़यात, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस गुमगु और कश्मकश की हालत में से हम गुजरे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बताऊँ कि आपकी पैदाइश 19 जनवरी को हुई, और इस लिहाज से मुझसे तकरीबन 8 बरस छोटी थी, और हमारी शादी 1957 में जलसा सलाना के बिल्कुल करीब हुई। तारीख तो मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे गालिबन 17 का ख्याल आता है कि गालिबन 17 को हुई, 17 दिसंबर को, और एक लंबा अरसा हमारा इस तरह इकट्ठे गुजरा
کہ باوجود بعض اختلافات کے انہوں نے بڑے صبر کے ساتھ مجھ سے گزارا کیا. ذہنی اور معاشرتی اختلافات جو روزمرہ کے رہن سہن کے معیار ہیں ان کے نتیجے میں پیدا ہو جاتے ہیں. ہمارے والدین نے ہمیں بچپن میں بہت ہی سادہ حالت میں رکھا اور نہایت غریبانہ حالت میں زندگی بسر ہوئی. باوجود اس کے کہ وہ ساری ضرورتیں بھی پوری ہوتی رہیں جو امیروں کے بچوں کو اس معنی ان معنوں میں نصیب ہوتی ہیں کہ پہاڑوں پر جانا اور دوسرے شوق پورے کرنا, شکار وغیرہ, تاکہ کسی قسم کے احساس سے کمتری میں مبتلا نہ ہوں. لیکن بال ارادہ حضرت مسلم موعود نے ہمیں ٹف بنانے کی کوشش کی اور سادہ زندگی کی دوسروں کو تعلیم دیتے تھے, اپنے گھر میں بھی یہی تعلیم عملاً جاری تھی. ان کے ہاں معیار زندگی ہمارے ہاں کے معیار سے بہت اونچا تھا. جب ہمارے گھر آئیں تو ایک واقفی زندگی کے ساتھ بھی آئی گئیں اور جس کا روزمرہ کا گزارا بھی بہت ہی معمولی تھا. تو بہت تکلیف میں وقت کاٹا لیکن بڑے صبر کے ساتھ, کبھی مطالبے نہیں کیے. ساری زندگی میں اس پر یہ بوجھ نہیں ڈالا کہ وہ لاؤ جو تمہارے پاس نہیں ہے. مزاج کے اختلاف کی وجہ سے اور دینی پس منظر کے اختلاف کی وجہ سے رفتہ رفتہ بہت ہی توجہ اور پیار کے ساتھ اور سمجھا بجھا کر ان کی تربیت کرنی پڑی. شروع میں ان کو جماعت کی خواتین اور جماعت کی تنظیموں سے کوئی ذاتی تعلق نہیں تھا, لیکن رفتہ رفتہ اس تعلق کو قائم کیا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس شادی کے استخارے سے متعلق بات بتا دوں. قادیان میں 1945-46 کی بات ہے جب یہ میں نے فیصلہ کیا ان کے ساتھ پیغام بھیجنے دینے کا. حضرت مسلم موعود کی عادت تھی کہ بیٹوں سے بھی پوچھا کرتے تھے, بیٹیوں سے بھی پوچھا کرتے تھے, اپنی مرضی نہیں ٹھونستے تھے, لیکن اگر کوئی غلط فیصلہ ہو تو اسے سمجھا دیا کرتے تھے کہ یہ مناسب نہیں ہے. اس طرح ایک بہت ہی اعلیٰ پاکیزہ افہام تفہیم کے ماحول میں سب کے رشتے طے ہوئے. تو میں نے جب ان سے فیصلہ کرنا تھا اس سے پہلے استخارہ کیا اور رویا کی حالت میں الہام ہوا, یعنی جاگتے ہوئے نہیں بلکہ رویا کی حالت میں, اور اس کے الفاظ یہ تھے کہ تیرے کام کے ساتھ اس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا. اس وقت مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میرے کون سے کام ہیں, وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کام لے گا. لیکن عجیب اس میں پیغام تھا کہ عملاً کاموں میں ان کو اتنی شرکت کی توفیق نہیں ملے گی, لیکن میرے تعلق کی وجہ سے ہمارے میرے کاموں کو خدا ان کے کاموں میں شریک, ان کو میرے کاموں میں شریک فرما دے گا اور ان کو بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. اس ثواب میں یہ ہمیشہ بڑے صبر اور رضا کے ساتھ حصہ لیتی رہیں اور مجھ سے جس حد تک تعاون ان کے لیے ممکن تھا ہمیشہ کیا. لیکن خاص طور پر قادیان کے اس سفر کا میرے دل پر گہرا اثر ہے. جانے سے پہلے کچھ ایک دو ہفتے دو تین ہفتے پہلے اچانک ان کی حالت بگڑی ہے, اور دراصل وہی وقت تھا جب پتے کا کینسر شروع ہو چکا تھا اور قادیان کا سفر اختیار کیا خطرناک. میرے لیے یہ اس لیے ممکن نہیں تھا کہ اگر میں ان کو چھوڑتا تو ان کے مزاج کا مجھے علم تھا, یہ میری موجودگی کے بغیر دوسرے خیال کرنے والے ہاتھوں میں تسلی نہیں پا سکتی تھیں. پھر بہت دفعہ بسا اوقات ہوتا تھا کہ ایلوپیتھک دوائیاں کام نہیں کرتی تو مجھے ہومیوپیتھک دینی پڑتی تھیں, اور خاص طور پر درد کے دوروں میں بہت زیادہ وہ مددگار ثابت ہوئیں.
तो मैंने इनके सामने मामला रखा कि मुझे मैं ठहर सकता हूँ लेकिन फिर कादियान का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा और सारी दुनिया से अहमदी आ रहे हैं पाकिस्तानी खसूस बड़ी मोहब्बत और शौक़ से हिंदुस्तान के कोने कोने से लेकिन आप पर फैसला है आप बताएं कि आप ठहरेंगी या जाना चाहेंगी उन्होंने कहा मैं जाऊँगी चुनाचे ये जो
कुर्बानी थी इसने कादियान का तारीखी जलसा बंद कर मानों में हमारे उन सब कामों में शरीक हो गए जो नेकी के काम हमें कादियान में करने की तौफीक मिली और ये एहसान मुझ पर बहुत भारी है कादियान के दिनों में जब बीमारी शिद्दत इख्तियार करती थी और दर्द से तड़पती थी तो मुझे कहा करती थी कोई दवाई दो मैं बाज़ दवाइयाँ देता था एलोपैथिक दवाइयाँ भी साथ जारी थी मगर उससे आराम नहीं पूरा आता था क्योंकि वो कैंसर के नुकता निगाह से नहीं दी जा रही थी तो अल्लाह के फजल से बाज़ दफ़ा तो चंद मिनट के अंदर अंदर सुकून से सो जाया करती थी लेकिन ये दिल में बात जागजनी हो गई थी कि मेरी बीमारी बहुत गहरी है और डॉक्टरों को पता नहीं लग रहा मुझे कहती थी कैंसर तो नहीं है तो मैंने फिर जब एक दफ़ा दुआ की तो एक अजीब रोया देखी जिसकी वजह से मुझे तसल्ली हुई लेकिन बाद के हालात से पता चला कि अल्लाह की ख़ास शान थी एक ख़ास रंग में उसने तसल्ली का इजहार फरमाया लेकिन उसके बावजूद तकदीर बदलने की का कोई सवाल नहीं था तकदीर अपनी जगह कायम रही रोया में मैंने देखा कि इनकी वालदा एक घर में खड़ी हैं और घर का नक्शा इस तरह है जैसा ये मस्जिद है लंबाई में और यहाँ तकरीबन दो तीन चौथाई जगह के सामने वो यूँ इस तरफ मुँह करके जिधर से मैं आना चाहता आ रहा हूँ खड़ी हैं और बाएं हाथ एक नाली से पार एक किचन है बावर्ची खाना है जिसमें कोई खड़ा है और खाने पके हुए हैं और आपा मेरा इंतज़ार करती हैं और फिर मुझे देखकर खुशी से कहती हैं कि वो आ गया है और हालत ये है घर की वो मुझे बताती हैं कि सारी नालियां बंद हैं और खाना साथ तैयार है लेकिन इस तरफ नहीं आ सकता और कोई नहीं खा रहा और किचन में बिल्कुल ठीक उसी तरह खाना मौजूद है इससे मुझे ख्याल आया कि ये नालियां बंद हाँ साथ ये कहा कि एक दफ़ा पहले भी इस तरह नालियां बंद हुई थी जब ये आया तो इसने कोई चीज़ चलाई और आसमान की तरफ उड़ कर फिर वो कोई चीज़ गिरी है और नालियां खुल गई फिर ऐसा ही होगा कि नालियां खुल जाएंगी तो उस पर सुबह उठकर मुझे तावीर ये समझ आई कि जब पहले दिल की बीमारी का हमला हुआ है तो उस वक्त भी मैदा किसी चीज़ को कबूल नहीं करता था और उलट देता था और हमें वजह समझ नहीं आ रही थी डॉक्टरों ने हर किस्म की दवाएं दी लेकिन कारगर साबित नहीं होती थी जब दाखिल कराई गई तो पता लगा कि दिल की नालियां बंद हैं और नालियां बंद होने की वजह से ये सारी तकलीफ थी चुनाचे डॉक्टरों ने वो नालियां खोली और इनको बाद में एंजियोप्लास्टी भी हुई लेकिन उस वक्त तो वक्ती तौर पर संभाल लिया लेकिन जब अभी कल गया तो उन्होंने कहा ये नालियाँ खोलनी पड़ेंगी और उस वक्त मुझे तो जहन जहन में नहीं था लेकिन जब ये ख्वाब आई तो मुझे पहली दफ़ा से मुराद ही नज़र आई कि पहले भी नालियाँ बंद थीं कादियान में भी और दिल्ली में भी कोई चीज़ भी मैदे में नहीं ठहरती थी उल्टी आती थी और बहुत तकलीफ़ की हालत थी जो भी खाती थी उलट जाता था इसलिए बड़ी तेज़ी से कमज़ोर हो रही थी तो उस वक्त ख्वाब के बावजूद ये अंदाज़ा नहीं था कि नालियाँ बंद होने से क्या मुराद है लेकिन जब यहाँ आकर डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और पित्ते की पथरी तशखीस करते हुए पत्थर निकालने के लिए ऑपरेशन किया तो उसने बगैर ऑपरेशन के पेट बंद कर दिया और ये मुझे इतला भेजी कि इनके मैदे की अंतरियों के साथ तल रखने वाली नालियाँ बंद हैं और उस वजह से वो खाना उलटता है अंदर जा ही नहीं रहा
और मैंने आरजी इसके मुतबादल के तौर पर अंतरी को काट के मेजे से बराह रास्त मुंह जोड़ दिया है और नाली खुल गई है। सुनाचे उसके बाद ये खुदा की फजल से सिलसिला जारी रहा। फिर जब कीमोथेरेपी का वक्त आया तो उन्होंने डॉक्टरों ने देखा कि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा बीमारी लंबी बीमारी और तकलीफों से मुतासर हो चुकी हैं। जिगर का बड़ा हिस्सा कैंसर से खाया गया था, गुर्दे जवाब दे रहे थे और उनका एक ख़तरा था कि अगर गुर्दे की नालियां बंद हो गईं तो किसी किस्म की कीमोथेरेपी नहीं की जा सकती। हमें जब उन्होंने बताया, मैंने भी अपनी दवाई भी शुरू की और इलाज शुरू की, दुआ खासतौर पर दुआ पर बहुत जोर दिया। तो जब नतीजा निकला तो डॉक्टर एवंस के अल्फाज ये थे कि नालियाँ खुली हैं, डक्ट्स आर ओपन, और बड़े ताज्जुब का इजहार किया कि ये नालियाँ किस तरह खुल गईं। वो समझते थे कि बंद हो चुकी होंगी। जब ये रोया मैंने घर में बताई और बच्चियों को, तो उन्होंने कहा इसका क्या मतलब है कि शिफा हो जाएगी। मैंने कहा अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे नालियाँ खुलने तक का पैगाम है और ये तो तुम हो चुकी है बात। तो अज़ीज़ा फ़ायज़ा ने अपने तौर पर यही तबीर की कि इसका मतलब ये है कि फ़िक्र की बात अभी है, क्योंकि इतना हिस्सा तो पूरा हो गया है, अल्लाह ने बाद में कोई ख़बर दी है कि नहीं। मैंने कहा मुझे तो इसके मुतल्लिक कोई ख़बर नहीं मिली। अज़ीज़ा फ़ायज़ा ने एक रोज़ा बयान की उस वक्त जो बिल्कुल वाज़े थी, और उस वक्त से फिर बावजूद इसके कि दुआ में कोई कमी नहीं की और तवक्कुल कायम रहा है खुदा के फजल से, लेकिन पैगाम नज़र आ गया था कि क्या है। उन्होंने रोया में देखा कि अज़ीज़ा नईमा खोखर, जो यहाँ रजना की बड़ी अच्छी कारकुन और बीबी से खसूसियत से बहुत ताल्लुक़, बहुत खिदमत करती रही हैं हमेशा हर रंग में, वो आई हैं और बीबी फायज़ा को कहती हैं कि आपने नज़म पढ़नी है जलसे में और उसके लिए मैं आपको तैयारी करवाऊंगी। तो फायज़ा कहती हैं कि मुझे दूर अदन दो, मैं उसमें से नज़म पढ़ूंगी। वो कहती हैं नहीं, दूर अदन से नहीं पढ़नी, हज़रत मसीह मौऊद इस्लाम की एक नज़म है वो चुननी हुई है, एक औरत आपको पढ़ के सुनाएगी और वही पढ़नी है और दूसरी कोई नहीं पढ़नी। हालांकि उनकी आदत तहकुम की बिल्कुल नहीं, लेकिन फायज़ा हैरान होती है, लेकिन जब वो औरत नज़म पढ़ती है तो वह है एक ना एक दिन पेश होगा तू फ़रा के सामने, चल नहीं सकती किसी की कुछ खजा के सामने। यदि इतनी सुरीली और इतनी पुरसर आवाज़ है कि वो दिल में डूब गई और सारे वजूद पर एक अजीब किस्म की सकीनत तारी हो गई, बावजूद इसके कि बज़ाहिर डरावनी ख्वाब थी, यानी पैगाम मौत का है, लेकिन उसके साथ ही वो खुदा ताला ने सकीनत तारी फरमा दी। तो जब मुझे उन्होंने रोया सुनाई तो बिल्कुल बात सारी वाज़े नज़र आ रही थी। बहुत से अहमदी दोस्त ऐसी रोया भेजते रहे हैं जिनसे बज़ाहिर खुशखबरी थी, लेकिन जिनको रोया की पहचान हो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि उनके उसके कोई माने नहीं हैं। जो पैगामात मिला करते हैं रोया में, वो या तफसीरी ज़ुबान में मिलते हैं या एक ख़ास अंदाज़ है अल्लाह ताला का जो आम नज़ारों से खुदा की भेजी हुई रोया को मुख्तलिफ कर देता है। चुनाचे ये जो रोया आती हैं अक्सर कि हमने देखा कि बहुत बीमार हैं, बहुत खतरनाक हालत है और फिर एकदम अच्छी हो जाती है, ये अगर कोई पैगाम रखती है तो ख़तरनाक पैगाम है। तो अक्सर मेरा तजर्बा है जब किसी बहुत ख़तरनाक मरीज के मतलब ये देखा जाए कि अच्छा हो गया, तो उससे मुराद सेहत नहीं बल्कि विशाल हुआ करता है। तो ऐसी रोया कसरत से आती नहीं, और बाज़ रोया ऐसी थी जिनसे रोया देखने वाले ने तबीर और की, लेकिन तबीर बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मसलन एक बच्ची ने मुझे खत रोया भेजी, एक किसी ने अपनी बेटी की रोया भेजी कि उसने देखा कि एक जगह इज्तिमा है लजना का, वहाँ एक गैर अहमदी औरत उस पर यह ऐलान करती है कि इश्तहार में ऐलान आया है कि मिर्ज़ा ताहिर अहमद की बीवी फौत हो रही है। मैं कहती हूँ अपनी उम्मी से कि इसके नीचे ये लिखा हुआ नहीं इसने सुनाया आपको कि अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़िन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है। इस रोया की भी अज़ीज़ा फ़ायज़ा ने तबीर समझ ली और मुझसे कहा कि अब्दा से ये सुनकर मुझसे इशारतन बात की कि हज़रत मसीह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के विसाल की जब खबर थी तो आपके मुतल्लिक था अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब, जाने वाले के मुतल्लिक नहीं था। इससे मैं समझ गया कि उनको पैगाम मिल गया है। तो बाद लोग समझते हैं कि रोया यूं ही बेकार है या हमने तो ये ताबीर की थी और वो निकली, लेकिन अमरे वाक़ यह है कि रोया का इल्म एक बड़ा गहरा इल्म है और बहुत ही साइंटिफिक इल्म है। इसमें अंदरूनी गहरे रवाबित पाए जाते हैं और खुदा तआला के कलाम की निशानियां पाई जाती हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बना सकता नहीं हरगिज़ बशर एक पाँव कीड़े का, तो फिर क्यों कर बनाना, और नूर हक़ उस पर आसान है। और हकीकत यह है कि इलाही पैगामात एक ख़ास रंग रखते हैं और उनकी अपनी एक पहचान है, मगर इलावा अजी बाज़ दफ़ा पैगाम इलाही होता है लेकिन ताबीर नहीं समझ आ रही होती, उसमें हिकमतें भी होती हैं। मुझे अपनी उस रोया की हिकमत ये समझ आई कि जिसमें नालियां खुलने तक की बिशारत है आगे नहीं थी, कि बीवी मुझसे रोज़ाना पूछती थी कि आपने कोई रोया देखी, और हमेशा कहा करती थी मैं आपकी दुआ से अच्छी होंगी। उस पर मैं बिल्कुल बेबस था, जब खुदा की तरफ से कोई वादे बिशारत ही नहीं थी तो मैं क्या कहता। उससे इनका दिल डूबता था इस बात से कि मुझे कोई बिशारत नहीं हुई। चुनाचे मैं फिर इसका इलाज इस मुझे ये सूझा कि मैं यही रोया बार बार बताया करता था। आपने देखा नहीं कादियान में मुझे खुदा ने यह बताया था नालियाँ खुल गई। अब देखें नालियाँ खुल गई, दोनों डॉक्टरों ने यही बात की, पहले डॉक्टर ने भी अंतरियों वगैरह की नालियाँ खुलने की बात की, गुर्दों की नालियाँ खुलने की बात की, और मैदा एक किस्म का बर्फी खाना साथ लगा हुआ था, वहाँ खाना होता था बेहतरीन लेकिन नालियाँ बंद होने की वजह से दूसरी तरफ पहुँच नहीं सकता था। तो मैंने कहा जब ये सारी बातें पूरी हो गई हैं तो फिर परेशानी की क्या वजह है। तो इस रंग में मैं उनको टालता रहा, लेकिन तकरीबन 10-12-15 दिन की बात है, मैंने कुरान करीम खोलने से पहले शदीद इस ख्वाहिश का इजहार किया कि खुदा मुझे कुछ तो बता, और जिस आयत पर मेरी नज़र पड़े वही मेरा पैगाम हो। तो जिस आयत पर नज़र पड़ी वो ये थी, उदखुलूहा बेसलाम नामिनीन, इस जन्नत में दाखिल हो जाओ सलामती और अमन के साथ। इससे पहले है इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून, मुत्तकी जन्नात और चश्मों में होंगे, उदखुलूहा बेसलाम नामिनीन, उसमें तुम सलाम और अमन के साथ दाखिल हो। तो वो तो बिल्कुल वाज़ेह था, और उससे फिर मुझे ये दिल में एक बात गड़ गई, किसी इसकी बिना पर नहीं बल्कि वैसे ही मुझे यकीन था कि आप जो चुनाचे पिछले जुमे बहुत सख्त क्राइसिस आया है। एक दिन चंद दिन दो तीन दिन पहले बिल्कुल ठीक ठाक थे, और जुमे को बड़ी तेज़ी से हालत बिगड़ी, और अब जुमेरात को हालत बिगड़नी शुरू हुई है तेज़ी से। तो जब तक जुमा नहीं आया उस वक्त तक आपकी हालत संभल चुकी थी और बड़े सुकून से बात करती थी, लेकिन इस सुकून की भी एक वजह थी, वो सिर्फ बीमारी से ताल्लुक़ रखने वाली बात नहीं थी बल्कि ईमानियात से ताल्लुक़ रखने वाली बात थी। कुछ अर्सा पहले हमारे डॉक्टरों वहाँ हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मुझे ये पैगाम भेजा कि आपके कहने की वजह से हम अब तक कैंसर का नाम नहीं ले रहे, और आपने जो हमें कहा था, मैंने ये कहा था कि आप ग्रोथ कहा करें, ग्रोथ भी तो एक कैंसर की किस्म है और झूठ भी कोई नहीं है, लेकिन लफ्ज़ कैंसर ना बोलें, उससे इनका दिल बैठेगा और पहले ही निसफ दिल काम कर रहा है, बीमारी इतनी शदीद। तावन उन्होंने बड़ा अच्छा किया, आमतौर पर ये इस बात की बातों में तावन नहीं किया करते, लेकिन बहुत ही तावन। आखिर मिसाल पर जो डॉक्टर हैं उन्होंने मुझे कहा कि अब मुझसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो सकता, अब मैं कल लाजमन बताऊँगी। फिर मैंने कहा कि वो जो बताएं तो फिर मैं बताऊँगा। और उनको मैंने कहा आइंदा अगर आपसे पूछें तो आप बेशक बताएं, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं कि आइंदा आपसे कभी नहीं पूछेंगे। चुनाचे मैंने उनको समझाया आराम से आस्था से, मैंने कहा आप जो गैरों से पूछती हैं कि आपको कैंसर है कि नहीं, आप ये बताएं कि कैंसर कोई ऐसी बीमारी है जिसे खुदा ठीक नहीं कर सकता, और अगर वो मारना चाहे तो वो कैंसर ही का मोहताज है। नज़ले वाले भी मर जाते हैं, शहद की मक्खी काटे उससे मर जाते हैं, छींक आने से मर जाते हैं, मरने वाले बगैर बहाने के भी मर जाते हैं। तो अल्लाह के बुलाने के हजार लाख करोड़ रस्ते हैं, और कैंसर कोई नाउज़ुबिल्लाह खुदा तो नहीं है। अगर आपको ईमान है पूरा और आप यकीन रखती हैं कि खुदा है और खुदा तआला की कुदरत है, तो फिर दुआ करें, लेकिन कैंसर के ऊपर इतना जोर न दें कि गोया ये बला ऐसी है जिसका कोई इलाज ही नहीं। फिर मैंने उनको समझाया कि देखें आपको दुआ आपको बेचैनी की एक वजह है, आप दुआ करती हैं तो दुआ के साथ दुआ के कबूल ना होने का तसव्वुर ही नहीं है। अब समझते हैं कि दुआ ज़रूर उसी रंग में कबूल हो जिस तरह आप कर रहे हैं या जिस तरह लोग आपके लिए कर रहे हैं। मैंने कहा ये दुआ के अंदाज नहीं है, आपको मैं समझाता हूँ कि दुआ इस तरह करनी चाहिए कि खुदा तआला के पहले सुपुर्द करें अपने आप को, अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दें और ये कह दें कि हम हर तरह राज़ी हैं, 100% तेरी रज़ा के मुताबिक हमारा दिल राज़ी रहेगा, मुतमिन है, कोई शिकवा नहीं। अब हमारी इल्तिजा है कि ऐसा कर दे, लेकिन वादा है कि ऐसा नहीं करेगा तो फिर भी हम तेरे ही हैं, कोई और रास्ता नहीं है। फिर मैंने उनको समझाया कि देखें मैं भी तो जाऊंगा, हम में से हर एक ने जाना है, ये तो ऐसी चीज़ है जो अटल है। बच्चों के नाम लिए घर मेहमान ठहरे हुए थे, मैंने कहा इनमें से हर एक पर एक ऐसा वक्त आएगा कि वो बिस्तर आखिरी जान के नहीं हर दिन बिस्तर पर होगा, मैं भी होऊंगा, मेरे बच्चे भी होंगे, उनकी औलादें भी होंगी। पहले कोई बच गए थे इस चीज़ से जो आपको ख्याल है कि शायद ये बात चल जाए। एक दफ़ा ये कहा कि मौलवी हंसेंगे, मैंने कहा जिनकी किस्मत में बदबख्ती हो मैं उसका क्या इलाज कर सकता हूँ। तकदीर लाही पर अगर कोई हंसता है तो उसकी बदबख्ती है, लेकिन मैं ये दुआ नहीं करूँगा कि मौलवी हंसते हैं इसलिए खुदा यूं करे। मैंने जो दुआ आपको बताई है तरीका दुआ का वो ये है, मुझे तो यही पसंद है। ये सुनते सुनते रिक्वत पैदा हो गई हाथ से बार बार कहा बस करें बस बस बहुत हो गई। फिर कहा मैं खुदा से माफी मांगती हूँ, मैं खुदा से माफी मांगती हूँ, मैं खुदा से माफी मांगती हूँ, मुझसे खुदा हुआ गलती हो गई, खुदा मुझे माफ कर दे, अंदर कभी मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगी, कभी किसी का ऐसे नहीं पूछूंगी, और इस ऐद पर आखिरी दम तक कायम रही। यहां तक कि मिसार ने कल किसी को कहा हैरत से कि अजीब बात है कि जब तक मेरा गांव उन्होंने इनसे बात नहीं की कोई, मुझे नहीं पता क्या बात की है, सब बेचैन थे और बार बार मुझसे पूछते थे बताएं क्या बीमारी है, मैं ठीक हो जाऊंगा कि नहीं। कि उसके बाद ऐसा इत्मीनान है कि कोई बेचैनी का इजहार नहीं और बिल्कुल बेकरारी का इजहार नहीं, ना मुझसे पूछा ना बात की, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अल्लाह के फजल से वो बात को समझकर आखिरी दम तक वफा के साथ इस हैद पर कायम रही और गैर अल्लाह की तरफ नहीं देखा। आखिर पर ये हालत थी कि बजाय इसके कि हम उनको तसल्ली देते वो हमें तसल्ली देते मुझे कहा कि आप बस करें, इतना ना फिक्र करें, इतना गम ना लगाए। मैंने जवाब दिया कि बीबी मैं मेरी बूढ़ हूं, मेरे तो दूर के गम भी तकदीर देते हैं, किसी कोने में बीमार हो मैं तो चैन हो जाता हूँ। पाकिस्तान में हम जो कि तकदीर लगाई जान निकाले रखी है, कभी इतना अजाब में मुबतला नहीं हुआ जितना पाकिस्तान की खबरों से खबरें आती थी कि हम जो कि तकदीर से होते थे। तुम तो मेरे करीब हो, तुम्हारा दुख तुम्हारी आंखों के सामने मेरे पास है बिल्कुल, ये कैसे मुमकिन है कि मैं महसूस ना करूं। हाँ अल्लाह सब्र की तौफीक बता देता है, मेरा हाल मुश्तकी है, गैरों पर नहीं खुलना कोशिश करता हूँ कि ना खुले, लेकिन ये कहो कि तकलीफ ना हो, मैंने कहा मेरे बस की बात नहीं। फिर इशारे से कहा ठीक है, मैं समझ गई हूँ। लेकिन बाद में मुझे ये कहा करते हैं कभी कभी आप घबराना नहीं, कल बावजूद इसके कि कैंसर की इस बीमारी में शदीद तकलीफ और अजाब में मुबतला होकर लोग मरते हैं, अल्लाह का अजीब एहसान था कि आखिरी वक्त में बड़े सुकून थी बच्चों को, मैंने कहा मैं बच्चों को बुलाता हूँ, बुलाया भी, कहती नहीं बुलाना नहीं उनको घबराहट होगी। मैंने बुलाया तो मैंने कहा ये बातें मैं मानूंगा, उनका हक है, मैं मजबूर हूँ, उनको ज़रूर बुलाना है, नज़र आ रहा था कि जा रही हैं। तो बच्चियाँ आई, उन सबको यही कहा घबराना नहीं, मैं ठीक हो जाऊँगी, अपना घबराएं। मुझे फिर कहा ऐसे आप जाएँ, आप रोज़े पर जाएँ, नमाज पर जाना है आप। मैंने कहा मैं आ जाता हूँ, कि नहीं आपने वापस नहीं आना, लेकिन मैंने कहा नहीं वो तो मैंने यहाँ नहीं आना है। चुनाचे आखिरी इतला जो मिली है रात 12 बजे के करीब वो यही थी मुबशर की तरफ से, और डॉक्टर मुबशर ने मेरी खिदमत की है, इतला आई है कि हालत सख्त शख्स है। चुनाचे उसी वक्त मैं बच्चों को लेकर गया तो रस्ते में मुबशर का कराम मिला, जिस दिन डॉक्टर मुबशर अहमद का उस पर टेली कम्युनिकेशन के ऊपर ना इस पर ट्रांसमिशन के ज़रिए कि मैं गेट पर लिफ्ट के नीचे नीचे लिफ्ट के सामने इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरे साथ जो दो बेटियाँ बैठी हुई थी, मैंने कहा तुम्हें समझ आ गई ये बात की, अगर हालत तश्वीशनाक होती तो मुबशर बीबी के बिस्तर का पहलू छोड़ कर ना आता, नीचे जो आ गया है इसलिए तुम अब तैयार हो जाओ और मुझसे वादा करो कि सब्र का नमूना दिखाओगी, कोई ऐसी हरकत नहीं करोगी जिससे खुदा तआला नाराज़ हो। हमने दुनिया को सब्र सिखाने हैं, हम अगर इस तरह बेचैन हो जाएं इन छोटी छोटी बातों पर वल्ला शुरू करने तो ठीक नहीं है। और अजीब बात है कि इनकी वालदा ने भी किसी को मुखातिब करके कहा अब तुम वल्ला ना करना और सब्र से काम लेना। चुनाचे बच्चियों ने अलग खल से विशाल नमूना दिखाया है, पूरी वफा के साथ कायम रही अपने अहदों पर और कायम है, और अल्लाह इंशाअल्लाह को कायम रखेगा। ये थे इनके बीमारी के मुख्तसर हालात। खास बात बहुत ही मुझे दिल को भाई वो ये थी कि एक दफ़ा मैंने कहा कि बीबी मैं आपके लिए बहुत दुआ कर रहा हूँ, आपको तसव्वुर नहीं है कि किस तरह कर रहा हूँ। तो कहती हूँ देखिए मेरे लिए नहीं करें, सिर्फ सारी दुनिया के बीमारों के लिए करें, और भी तो बीमार हैं वो जो दुखों में मुबतला है। मैंने कहा मैं पहले ही उनके लिए कर रहा हूँ, कभी वही हुआ ही नहीं कि तुम्हारे लिए करूँ और जो फैल कर सारी दुनिया में बीमारों तक न पहुँचे। जिस जिस मुल्क में मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स में लोग तकलीफ में मुबतला हैं, तुम्हारे दुख का फैज दुआओं की सूरत में सबको पहुँच रहा है। इस पर बड़े चेहरे पर इत्मीनान आया, ये ठीक इस तरह दुआ किया करें। आपका जैसे मैंने बयान किया है रजना वगैरह से कोई ऐसा ताल्लुक इब्तदा में नहीं था, क्योंकि तरबियत और ढंग की थी, लेकिन मेरे कामों में बहुत ही बोझ उठाया है क्योंकि मेरे ताल्लुकात बहुत ज़्यादा वसी थे और हर वक्त मेहमानों का आना जाना और मीटिंग होनी घरों में और मेरा बेवक्त घर से बाहर निकल जाना। सुबह एक सफ़र पर रवाना हुआ कि रात को आ जाऊंगा, वहाँ से आगे बंगाल चला गया, कई दफ़ा दो दो हफ्ते बाद तीन तीन हफ्ते बाद लौटा, लेकिन कभी भी अदम ताबन का इजहार नहीं किया, ये शिकवा नहीं किया कि आप मुझसे ये क्या करते हैं, वो ये छोड़ के चले जाते हैं और बताते भी कुछ नहीं। और बहुत सी ऐसी बातें थीं जो मैं खिसरे के काम किया करता था और घर में इशारतन भी जिक्र नहीं करता था, ये शिकवा कभी किया करते थे कि बाकियों को पता है आप मुझसे ही राज रखते हैं, सिर्फ मुझसे फ़लाँ ने पूछा आके कि आपने फ़लाँ काम किया फ़लाँ जगह गए, मुझे नहीं बताया। मैंने कहा मैं तो जवाती कामों को और घर के मामलात को अलग अलग रखता हूँ और मैं पसंद नहीं करता कि जो जमाती जिम्मेदारियाँ मुझ पर आयद होती हैं मैं घर वालों से जिक्र करूँ, इस तरह फिर वो घरों के दखल शुरू हो जाते हैं और तबसरे और बहुत से बातें मेरे कामों में इस तरह गलत असर पड़ने का ख़तरा है। तो इस बात को फिर कबूल किए रखा, हमेशा वफात के दिन तक कभी भी जमाती कामों में दखल अंदाजी की ना कोशिश की ना मुझसे जस्तजू की ना मशवरे लिए। अगर मामूली मशवरे दिए हैं तो मसलन 41 को ठीक करना है, मेहमान आते हैं हम बहुत गंदी हालत में है, वहाँ काम भी किया जाके, लेकिन रफ्ता रफ्ता जमात की ख्वातीन से ताल्लुक बहुत बढ़ गया, ख़ास तौर पर हिजरत के बाद तो बहुत वसी ताल्लुक हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में, फिजी में, सिंगापुर में, जहाँ जहाँ गईं, फिर कॉन्टिनेंट यूरोप के कॉन्टिनेंट के सब ममालिक में, कनाडा में, अमेरिका में, बहुत ही इनकसारी के साथ ख्वातीन से मिलती थी, और ये एक ऐसी खूबी थी जो फितरतन वदियत हुई थी, उसमें कोई तकल्लुफ नहीं था, कभी भी अपने आप को किसी मानों में भी बड़ा नहीं समझा, और हर एक से बराबर मोहब्बत से प्यार से मिलती थी। ख़ास तौर पर इंग्लिस्तान की ख्वातीन से तो बहुत ही ताल्लुक था, और कहा करती थी कि बहुत ही एहसानात हैं इनके, बहुत खिदमत की है, लेकिन ये तकलीफ थी कि किसी ने बीमारी की हालत में नहीं मिल सकती उनसे, तो क्या करूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि इस हालत में लोग आगे मुझे देखें, इसलिए मैं अच्छी होंगी तो फिर मिलूंगी, उनको पैगाम दे दो कि मेरे दिल में कदर है, मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ, मैं जो रोकती हूँ मजबूरी है मेरी, से मेरे जिस हद तक भी हमसे हो सका लगने मालूम हो पैगाम भेजे कि दीदी के मुतलिक गलत तस्वर ना करें, नौज बिल्ले आपसे अदम ताल्लुक की वजह से नहीं बल्कि ताल्लुक की वजह से है, और बहुत चंद थे जिनके साथ इतनी बेतकल्फी थी या बीमारी के दौरान हो गई कि जिनको आप अपने साथ बर्दाश्त कर लेती थी और कहती थी कि इन्हीं को इन्हीं की सपुर्द खिदमत करो। उनमें एक डॉक्टर बुशरा गाल में सरदार रफीक साहब की बेगम हैं, कैप्टन बुशरा नर्स, बहुत खिदमत की है उन्होंने। एक लईखा हैं, लईखा अहमद क्राइडन की, उन्होंने दिन रात खिदमत की, उनकी खिदमत को दोनों की खिदमत को बहुत सराहती थी। इसके अलावा और भी ऐसे जिनको खिदमत का मौका मिला है, अमतुल खुद्दूस अयाज जो डॉक्टरी के चौथे साल में पढ़ रही हैं, इफ्तिखार अयाज साहब की बेटी, उनसे बहुत खुश थीं, उनका एक तो डॉक्टर होने की वजह से इनकी मदद को समझती थी, दूसरे मिजाज इतना धीमा मीठा मोहब्बत करने वाला है कि बहुत ही प्यार के साथ इनको समझाती थी और उससे बहुत खुश रहती थी, और कई दफ़ा खुद्दूस मुझे बताती थी कि आप पहले आते तो हैरान हो जाते, कितने अच्छे मूड में मुझसे बातें करती रहीं, अपनी पुरानी बातें बताती रहीं, जो सफ़र किए आपके साथ ये वो सारे किस्से करती रहीं। तो इन तीन को तो बहुत ही गैर मामूली खिदमत की तौफीक मिली है। इसके अलावा हमारे सबिया लोन साहिबा हैं, नईमा खोकर हैं, और बाकी सब को जहाँ जहाँ कुछ मौका मिला खिदमत उन्होंने की, लेकिन मजबूरी की वजह से उनको मौका दिया नहीं जा सका। बाहर से जो आए हैं, पहले तो मैं बहुत रोकता रहा, मेरी तबीयत पे बोझ पड़ता था कि लोग आ जाएं, और ख़ास तौर पर इसलिए कि इनको अपनी जहानत की वजह से फौरन पता लग जाता कि कोई बात हो गई है जो लोग आ रहे हैं, मगर बहरहाल बहनों भाइयों का हक़ है, मैं उसको रोक नहीं सकता था। चुनाचे बहुत मुश्किल से ज़हनी तौर पर तैयार किया कि मैंने रोक दिया, क्या ज़रूरत है आने की, फिर कहा कि अच्छा वो बहुत इसरार कर रहे हैं, कहते हैं हम मर्जी चाहते हैं मिलने को, क्यों आप क्यों रोकते हैं, तो फिर मैं इजाज़त दे दूँ। शुरू में तो कहती थी ना दो इजाज़त, लेकिन आखिर बार बार मेरे मुख्तलिफ तरीक़ से कहने पर आमादा हो गई। फिर इनकी हमारी अजीज़ा शाहिदा नसीम, इनके भाई नसीम की बीवी और नसीम दोनों आ गए, सबिया आ गईं इनकी बड़ी बहन हैं, फौजिया भी चंद दिन में पहुँच गई। मेरी बहनों ने बहुत ज़ोर दिया मगर मैंने कहा कि नहीं मुनासिब नहीं है, आप लोग ठहरें। अपनी बहनों की तो और बात है, मेरी बहनें भी पहुंचनी शुरू हो गई तो इनको ख़तरा होगा कि बहुत ज़्यादा मामला संगीन हो गया है। लेकिन अमतुल जमील और बाजी अमतुल क्यूम जो मेरी बड़ी बाजी हैं और बह मुजफ़र सरदार मुजफ़र साहब की बेगम हैं, ये यहाँ पहुँच गई थी, कल ही पहुँची और मुलाकात हो गई, देख लिया। ये था इनका अस्सा हयात और बीमारी का दौर, بعض جو تسلی کے لیے میں باتیں ڈھونڈتا تھا ان میں ایک یہ بات بھی تھی جس کو بڑے ہی جذبہ تشکر کے ساتھ سنا کرتی تھیں. میں نے کہا دیکھو ایک مریض ہے آج دنیا میں جس کے لیے اتنی دعائیں ہو رہی ہیں کہ خدا کی قسم ساری دنیا میں کوئی مریض ایسا نہیں جس کے لیے اتنی دعائیں ہو رہی ہیں. مشرق سے مغرب تک دنیا بچھے کہ میرے خط ملتے ہیں تو اندازہ نہیں کر سکتی کتنے ترپانے والے خط ہیں. آدمی حیران ہو جاتا ہے کالے گورے ہر رنگ کے لوگ دور دراز ملکوں میں اس قدر بے قرار ہے. تو خدا نے تمہیں یہ سعادت نصیب کی ہے, کہاں سے کہاں تمہیں پہنچا دیا, تم شکر کرو. مجھے کہا آپ لاکھ لاکھ شکر کریں. میں نے کہا ہاں میں تو لاکھ لاکھ شکر کرتا ہوں. تو بہت ہی آخری دور میں دعاؤں کی طرف, نیک باتوں کی طرف, ذکر الہی کی طرف بہت توجہ رہی. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے آخری دنوں میں پوری طرح بغیر کسی تردد کے, بغیر کسی استثناء کے کامل طور پر راضی برضا ہو چکی تھی اور اپنے آخری وقت کا اندازہ ہو چکا تھا. رات جس وقت دم توڑا ہے کوئی تکلیف نہیں تھی, باتیں کر رہی تھی اور یہی میری دعا تھی اللہ سے بہت زیادہ, یا خدا آرام سے اٹھانا. بشرا نرس جو ساتھ تھیں انہوں نے کہا کہ باتیں کر رہی تھیں کوئی تکلیف نہیں تھی, بڑے سکون میں تھیں. تو ایک بات کے بعد دوسری بات نہیں آئی تو میں نے دیکھا تو گھبرا کر میں باہر گئی. ڈاکٹر نے آ کے دیکھا, اس نے کہا تو دم توڑ چکی ہے. تو اس طرح خدا نے اس التجا کو قبول فرما لیا اور بڑے سکون کے ساتھ رخصت ہوئی ہیں. ان کی نماز جنازہ انشاءاللہ کل اسلام آباد میں ہوگی. لیکن اس نماز جنازہ کے ساتھ میں ایک اور نماز جنازہ غائب کو شامل کرنا چاہتا ہوں, اور وہ ایک ایسی خاتون کی نماز جنازہ ہے جن کے متعلق ایک خاص بات محرک بنی ہے. ہمارے چوہدری محمود احمد صاحب چیما جو انڈونیشیا میں مبلغ مستقل طور پر فائز ہوئے ہیں, ان کی بیگم فاطمہ بیگم صاحبہ کو بھی بی بی والا ہی کینسر تھا, یعنی پتے کا کینسر جو کینسر میں سب سے خطرناک سمجھا جاتا ہے. اور ان کی یہ بات پیش نظر رکھیں, لیکن اب جو اصل محرک بنا وہ ایک اور بات ہوئی, وہ یہ کہ طاہرہ صدیقہ ناصر صاحبہ حضرت بھائی جان کی بیگم رحمہ اللہ تعالیٰ, انہوں نے مجھے خواب لکھی اور لکھا کہ میں بڑی سخت کی وجہ سے پریشان ہوں کہ مجھ سے ناراض نہ ہوں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث, یعنی اس دنیا میں. کہتے میں نے دیکھا ہے کہ وہ رویا میں کہ وہ آتے ہیں اور میری طرف کوئی توجہ نہیں کرتے اور ایک معمولی سی عام سی عورت ہے, لڑکی ہے, اس کے ساتھ شادی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ شادی کر کے اس کو لے جاتے ہیں اور وہ اس کے باپ کا نام دوست محمد ہے. تو جب یہ رویا میں نے پڑھی تو اسی وقت میں نے افاقی نظر ڈال کے دیکھا کہ کون ایسا ممکن ہے خدا کے نزدیک جس کا اتنا مرتبہ ہو کہ عالم بالا میں خلیفہ وقت اس کے استقبال کے لیے تیاری کرے, اور خلیفہ یعنی سابق خلیفہ اس کے استقبال کی تیاری کرے اور ویسے دیکھنے میں معمولی سے انسان ہو. تو میں نے ان کو تعبیر تو اسی وقت لکھ لی, جب میں نے نظر ڈالی تو مجھے یہی نظر آئی فاطمہ بیگم. میں نے لکھا کہ فاطمہ بیگم کے وصال کی خبر ہے, آپ کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں, اور ان کو ملیں, میری طرف سے عیادت کریں اور سلام پہنچائیں. چنانچہ وہ گئیں اور مجھے تعجب بھی کیا کہ آپ نے کیسی تعبیر کی ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ ایک بہت ہی فدائی اور غیر معمولی صابرہ واقف زندگی عورت تھیں. خاوند نے وقف کیا 41 سال شادی میں سے کے عرصے میں سے صرف 11 سال اکٹھے رہنا نصیب ہوا اور 30 سال جدا رہے اور نہایت غربت کی حالت میں زندگی بسر کی. ساری عمر شادی کے 41 سال کواٹروں میں بسر ہوئی. ان کی 4 بچیاں ہیں, ان کو بڑھانا ان کی دیکھ بھال سب خود کی, شادیاں بھی ان کی خود کیں. اور خاوند تو ایک الگ دنیا میں بسنے والے انسان تھے, ان کا اپنی بیوی اور بچیوں کے سود و زیاں سے گویا کوئی بھی تعلق نہیں تھا, اور کلیتاً ذمہ داری انہوں نے قبول کی. میری پہلے ان سے واقفیت وقف جدید میں ہوئی جب میں وہاں ہومیوپیتھک کیا کرتا تھا, تو کوارٹر کے اکثر مریض وہاں آتے تھے. فاطمہ بیگم بھی اپنی ایک بچی کو لے کے آئیں جن کو الرجی کی بڑی تکلیف تھی, غالباً طیب بچیمہ تھیں, یا امت الحفی حمید یا بشرا یا سمینہ, مجھے یاد نہیں, سمینہ تو نہیں تھی, وہ بہت چھوٹی ہیں, طیبہ اور امت الحمید میں سے کوئی تھیں, غالباً طیبہ تھیں. بہت میں نے علاج کیے, پڑھ نہیں تھی ایم ایس سی میں یا بی ایس سی میں, سائنس کی اسٹوڈنٹ تھیں, مگر میرے علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. لیکن مسلسل آتی تھیں, کہتی تھیں آپ پہ مجھے اعتماد ہے, آپ علاج کریں پھر بھی جو بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں کسی اور ذریعے سے شفا بخش دی. اس وقت میں نے ان کو قریب سے دیکھا ہے اور اتنی ہی واقفیت ہے, بڑی صابرہ شاکرہ, کوئی کسی قسم کا تصنع نہیں, کوئی ریا نہیں, بہت سادہ زندگی, فدائی سلسلے کی, 10 سال تک صدر لجنہ بھی رہیں, اور قرآن کریم پڑھانے کا بہت شوق تھا, خود بھی بڑے شوق سے سیکھا. دوست محمد کے متعلق مجھے خیال آیا کہ ان کے والد ضرور کوئی صحابی ہوں گے یا کوئی بزرگ ہوں گے, ورنہ ان کا نام دوست محمد نہ بتایا جاتا. جب تحقیق کی تو پتہ لگا کہ چودھری محمد عبداللہ صاحب جو سیالکوٹ قلعہ صوبہ سنگھ کے رہنے والے تھے, انہوں نے 14 سال کی عمر میں 1904 میں حضرت مسیح السلام کی بیعت کی, اور وہ صحابی تھے اور بہت ہی فضائی اور عاشق انسان تھے. اکثر زندگی کا حصہ وہی عمارت کے صدر امیر رہے, اور گھٹیالیاں کالج بنانے میں بھی انہوں نے بڑی محنت کی. یہ اس دور کے لوگ ہیں جن میں پٹواریوں میں ولی پیدا ہونا بہت شاذ کی بات ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے, حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت کا یہ بھی ایک نشان ہے کہ پٹوار خانوں سے اولیاء پیدا کر دیے. اور ان کی بھی 4 بیٹیاں تھیں, فاطمہ بیگم کی بھی 4 بیٹیاں اور میری بھی 4 بیٹیاں. تو جب میں نے غور کیا تو یہ سارے تعلق قریب آ گیا, اور بیماری بھی وہی تھی. تو میں نے سوچا تھا, ان کے پہلے ہی آ گیا تھا مجھے, قوائف وغیرہ پہلے مل چکے تھے, مگر چونکہ مجھے یہ بعض رویا وغیرہ کی وجہ سے, اور یہ جو میں نے ذکر کیا ہے ادخلوها بسلام آمنین کی خوشخبری سے, دل میں یقین تھا کہ اب دن قریب ہیں, اس لیے میں نے سوچا کہ ان کا جنازہ بھی بیوی کے جنازے کے ساتھ ہی پڑھاؤں گا, ایک جنازہ حاضر اور ایک جنازہ غائب, اور ساتھ واقفین کو یہ تلقین کرنے کا بھی بہانہ ہاتھ آ جائے گا کہ اس کو وقف کہتے ہیں. خامن نے وقف کیا اور کامل وفا کے ساتھ بیوی نے اپنی ساری زندگی کی جوانی دین کی حضور پیش کر دی, اور سارے دکھ خود اٹھائے اور خامن کو بے فکر کر کے دین میں چھوڑ دیا. اس کے برعکس آج کے زمانے میں ایسے واقفین ہیں جن کی بیویاں جب وہ باہر آتے ہیں اور جماعت کے صدقے ان کو مقامی نیشنلٹی ملنے نظر آنے لگتی ہے تو آنکھیں پھیر لیتے ہیں, اور بیویاں اس میں ذمہ دار ہوتی ہیں بڑی حد تک. اپنے خاندانوں کو کہتی ہیں اب کیا ضرورت ہے, بس ٹھیک ہے اپنی نیشنلٹی لو, وظیفے لو, اپنے بچوں کو یہاں تعلیم دلاؤ, جماعت میں کیا رکھا ہے. اگر نہیں بھی کہتیں تو عملاً یہی ہے. مجھے تحریک جدید کی طرف سے بعض لوگوں نے یہ متنبع کیا کہ آپ اس معاملے میں بہت زیادہ سہولت دے رہے ہیں, بہت زیادہ نرمی کر رہے ہیں, واقفین کو ان کی بیگمات کے ساتھ سب کو اجازت ہے اور پھر لمبا عرصہ وہاں ٹھہرے رہتے ہیں, تو اس سے تو خطرہ ہے, وہ بھاگ جائیں گے. تو میں نے ہمیشہ ان کو جواب دیا کہ جو خدا کے ہیں وہ خدا کے پاس رہیں گے, جو نہیں ہیں وہ بھاگ جائیں گے, مجھے ان کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو خدا کا ہے وہ نہیں بھاگ سکتا, اس کا آخری سانس خدا کے قدموں میں ہوتا ہے, اور وفا کے ساتھ وہ خدمت دین پر قائم رہتا ہے, یہ وقت وہ کرتا ہے. تو کئی لوگ ایسے آئے چلے گئے, وہ سمجھتے ہیں ہم چلاکیاں کر گئے ہیں, مگر وما یخدعون الا انفسهم, وہ چلاکیاں کر رہے ہیں اپنے نفسوں کے خلاف, دھوکہ دے رہے ہیں تو اپنے وجودوں کو, اپنی اولاد کو, ان کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں رہا ان کا, نہ دین رہا نہ دنیا رہی. تو یہ گھاٹا کھانے والے لوگ ہیں. وفادار اور کامل وفادار ہی ہے جس کا وقت قبول ہوتا ہے. اور اس ضمن میں بیویاں ایک غیر معمولی کردار ادا کر سکتی ہیں, اور یہ وہ ہیں جن کے متعلق تاریخ خاموش رہ جاتی ہے. تو آپ لوگ متعجب نہ ہوں کہ کیوں میں نے ان کا خصوصیت سے آج ذکر کیا ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ احمدیت کی تاریخ میں کچھ ابواب ہیں جو سیاہی سے لکھے جا رہے ہیں کتابوں پر, کچھ ان کے پس منظر میں روشنائی سے لکھے جانے والے ایسے ابواب بھی ہیں جن کو ظاہری آنکھ نہیں دیکھ رہی. کتنی قربانی کرنے والی عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے خاندانوں کے ساتھ اپنی جوانیاں ڈھال دیں اور زندگی کے آرام تج دیے, اور بڑے صبر کے ساتھ اپنے دکھوں کو اپنے حد تک اپنی چھاتیوں میں محفوظ کیے ہوئے وہ وفا کے ساتھ سلسلے کی خدمت پر قائم رہیں, عہد بیعت پر قائم رہیں, عہد وقف پر نہ صرف قائم رہیں بلکہ خامدوں کو قائم رکھا, اور جب ان میں کمزوری آئی اٹھ کھڑی ہوئی اور کہا خبردار یہ وہ رستہ ہے جس سے واپسی کا کوئی سوال نہیں ہے. تو ان کا بھی اس تاریخ میں ذکر آنا چاہیے. میں نے سوچا کہ اب وقت ہے, صرف میری بیوی کا حق نہیں اور وقت میں زندگی ہیں جن کی بیویاں ہیں جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں بہت زیادہ قربانیاں کی ہیں, ان کا بھی حق ہے کہ تاریخ ان کے ناموں کو زندہ رکھے اور ان کے لیے دعائیں کی جائیں. صرف مشکل یہ ہوتی ہے کہ عورتوں کے معاملات میں بعض دفعہ جب باقاعدہ اکٹھی کی جائیں کوائف اکٹھے کیے جائیں تو مبالغہ میری کو مقابلے کچھ ریاکاریاں شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے میں ابھی تک ایسا نہیں کہا, لیکن دوسرے جن کے علم میں ایسی مخلص خواتین آتی ہیں جو فوت ہو چکی ہوں یا بھی زندہ ہوں, ان کو چاہیے کہ وہ ان کی تاریخ محفوظ کر کے وہ تحریک جدید کو بھجوائیں تاکہ ان کے نام بھی کتابوں میں دعاؤں کی خاطر لکھے جائیں. جہاں تک اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے وہ کسی ظاہری ذکر کا بھی محتاج نہیں ہے. اس کے ہاں تو ان واقفین کی یہ پاک مقدس بیویاں بھی وقف کے طور پر ہی شمار ہوں گی, اور ان کا فیض انشاءاللہ ان کی آئندہ نسلوں کو پہنچتا رہے گا. اس کے بعد اب میں اس کو خطبے کو ختم کرتا ہوں. سب کو سلام, کیونکہ وہ بار بار اظہار تشکر کرتی تھیں کہ جماعت کتنی پیاری کتنی دعائیں کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بڑی رحمت کرے اور ہم سب کا بھی دیکھ انجام کرے, اور ہماری اولادوں کو پوری وفا کے ساتھ دین حق پر قائم رکھے, اور خدمت دین کی توفیق یہی نسلیں نہ پائیں بلکہ نسلوں بعد نسلیں قیامت تک ہماری اولادیں خدمت دین کی پوری وفا کے ساتھ توفیق پاتی رہے. میرے پرائر شریف صاحب نے کہا کہ پاسپورٹ پر تاریخ پیدائش 21/1/35 لکھی ہوئی ہے, لیکن وہ غلطی سے لکھی گئی تھی اور پھر ٹھیک نہیں ہو سکتی وہی چل رہی ہے, مگر اصل تاریخ پیدائش 36 ہے, کیونکہ جو پہلا پاسپورٹ ہے میرے پاس پڑا ہوا ہے اس پر 36 ہی لکھی ہوئی ہے, بعد میں کسی وجہ سے غلطی ہو گئی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولا ذكر الله أكبر.